एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं, लगभग 2000 साल पीछे। एक ऐसी छोटी सी किताब की दुनिया में गोता लगाएंगे जिसके सबक मुझे लगता है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं।
हाँ, बिल्कुल।
ये किताब है एपिक्टेटस की एनकिरिडियन।
नमस्कार। एनकिरिडियन नाम सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर इसका मतलब बहुत ही सीधा सा है, छोटी पुस्तिका या कह लीजिए हैंडबुक।
हैंडबुक, अच्छा।
हाँ, और ये सचमुच एक हैंडबुक ही है। मतलब जीवन की जो उथल पुथल है ना, उसके बीच शांति और मजबूती कैसे पाएं, उसकी एक प्रैक्टिकल गाइड। कोई ऐसा भारी भरकम दर्शन का ग्रंथ नहीं।
बिल्कुल, और आज हमारा इरादा है कि इस पुराने ज्ञान के खजाने से वो कुछ मोती निकालें जो हमें ये समझने में मदद करें कि भाई बाहरी हालात चाहे जैसे भी हो,
हाँ,
चाहे वो ट्रैफिक जैम हो या करियर की टेंशन, हम अपने अंदर की शांति कैसे बनाए रख सकते हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई एक गुलाम, हाँ एक गुलाम के तौर पर जीने वाले दार्शनिक के विचार हमें आज़ादी का रास्ता दिखा सकते हैं।
देखिए, ये सवाल ही एपिक्टेटस के जीवन को इतना इतना जरूरी बना देता है आज भी। सोचिए, एपिक्टेटस, जिनका जन्म लगभग 50 ईस्वी में हुआ, आज जो तुर्की है वहां के एक इलाके में गुलाम पैदा हुए थे।
गुलाम,
हाँ, उनका नाम तक एपिक्टेटस, यूनानी में इसका मतलब ही है खरीदा हुआ या अधिग्रहित। ये उनके जीवन की शुरुआत थी।
ये बात तो मतलब रोंगटे खड़े कर देती है। एक इंसान जिसका शरीर किसी और की संपत्ति माना जाता था, वो हमें मन की आजादी सिखा रहा है।
और मुश्किलें तो और भी थी शायद।
बिल्कुल, रोम में गुलामी के दौरान ही ऐसा कहा जाता है कि उनके मालिक ने गुस्से में उनका पैर इतनी बुरी तरह तोड़ा कि वो जिंदगी भर के लिए लंगड़े हो गए।
हे भगवान।
लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, स्टोइक दर्शन का अध्ययन करते रहे, सीखते रहे। सही कहा। और शायद शायद इसी वजह से उनके दर्शन में इतनी गहराई है, इतनी सच्चाई है।
है ना, उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने दुख को उसे जिया था।
बिल्कुल, और आज़ादी मिलने के बाद जब उन्होंने ग्रीस में अपना दर्शन का स्कूल खोला, तो उनकी बातें किताबी नहीं थीं, वो जीवन के कठोर अनुभवों से निकली थीं।
और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खुद खुद एक शब्द भी नहीं लिखा।
हाँ, ये भी तो कमाल है। उनका सारा ज्ञान हम तक पहुंचा है उनके एक बहुत ही काबिल छात्र एरियन के जरिए।
एरियन,
हाँ, उन्होंने उनके लेक्चर के नोट्स लिए और फिर उन्हें एनकिरिडियन और डिस्कोर्सेस के नाम से छापा। तो ये समझिए, सीधे स्रोत से मिला ज्ञान है, बिना किसी फिल्टर के।
तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हैंडबुक, ये एनकिरिडियन कोई बहुत मोटी भारी भरकम किताब नहीं है। इसमें कुल 53, हाँ 53 बहुत छोटे छोटे अध्याय या सूत्र हैं।
सिर्फ 53?
हाँ बिल्कुल, इसे बनाया ही ऐसा गया था कि इसे आसानी से कोई अपने साथ रख सके, रोज थोड़ा पढ़ सके और मुश्किल वक्त में उसे याद कर सके।
इसका मकसद क्या है फिर? मतलब क्या सिखाना चाहती है ये किताब?
मकसद बहुत साफ है, हमें एक ऐसा एक मानसिक ढांचा देना, एक फ्रेमवर्क जिससे हम बाहरी घटनाओं के बावजूद, चाहे वो कितनी भी बुरी हों, अनचाही हों, अपनी भावनाओं पर काबू रख सकें और सही रास्ते पर चल सकें।
और ये सिर्फ दार्शनिकों के लिए नहीं है?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में थोड़ी ज्यादा शांति, थोड़ी स्थिरता और थोड़ा मतलब ढूंढ रहा है।
ये किताब एक तरह से हमें अपने मन के अंदर एक किला बनाना सिखाती है ना?
हाँ कह सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन क्रांतिकारी सवाल से, असल में हमारे कंट्रोल में है क्या और क्या नहीं है। और फिर धीरे धीरे ये हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच को, अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को कैसे बदल सकते हैं, ताकि बाहर की दुनिया के उथल पुथल हमें अंदर से हिला ना सकें।
तो इसमें कुछ खास बातें हैं जिन पे हम आज ज्यादा ध्यान देंगे, जैसे वो नियंत्रण का द्वंद वाली बात।
हाँ, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल।
और चीजों को देखने का हमारा नजरिया, जिसे वो इम्प्रेशंस कहते हैं, वो हमारी भावनाओं को कैसे तय करता है।
बिल्कुल।
अपनी इच्छाओं और डर को सही दिशा कैसे दें, और समाज में रहते हुए अपनी भूमिकाएं निभाते हुए भी अपनी अंदरूनी आज़ादी कैसे बनाए रखें। तो चलिए इन विचारों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं।
हाँ जरूर। तो सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर सिद्धांत है नियंत्रण का द्वंद्व, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। एपिक्टेटस पहले ही सूत्र में कहते हैं, दुनिया में चीजें दो तरह की हैं,
दो तरह की, कौन सी?
एक वो जो हमारे वश में है और दूसरी वो जो हमारे वश में नहीं है।
सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है।
तो हमारे वश में क्या है फिर?
हमारे वश में है हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारी इच्छाएं, मतलब हमें क्या चाहिए, हमारी विरक्ति, मतलब हमें क्या नहीं चाहिए। आसान भाषा में कहें तो हमारे मन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सब।
अच्छा, और वश में क्या नहीं है? हमारा शरीर। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं उसे स्वस्थ रखने की, पर बीमार पड़ना, बूढ़ा होना, ये तो तय है। हमारी संपत्ति, दूसरों की नजर में हमारी इज्जत, हमारा पद, मौसम कैसा रहेगा, दूसरे लोग क्या सोचेंगे या करेंगे, मतलब हमारे मन के बाहर की लगभग हर चीज।
अच्छा, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम बाहरी चीजों के बारे में सोचना ही बंद कर दें?
नहीं नहीं, सोचना बंद नहीं करना है, बस ये समझना है कि उन पर अपनी खुशी या अपनी शांति टिकाना वो समझदारी नहीं है। एपिक्टेटस कहते हैं कि हमारा सारा दुख, हमारा गुस्सा, हमारी निराशा, ये सब इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे वश में हैं ही नहीं।
जैसे?
जैसे हम चाहते हैं कि ट्रैफिक ना मिले, या हमारा बॉस हमेशा हमारी तारीफ करे, या लोग हमें सोशल मीडिया पर पसंद करें। जब ऐसा नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं।
हाँ, ये तो होता है।
जबकि ये चीजें हमारे सीधे कंट्रोल में थी ही नहीं। हमारा कंट्रोल किस पर था? सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया पर। उस स्थिति में हम कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो हमारे हाथ में था।
ये तो सोचने वाली बात है। हम कितनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं उन चीजों पर जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम कोशिश करना छोड़ दें? अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे बदलने की कोशिश ना करें?
नहीं, कोशिश जरूर करें, लेकिन नतीजे से अपनी शांति को ना जोड़ें। अपना काम करें जो आपके वश में है, जैसे मेहनत करना, सही बात कहना, लेकिन फल क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा या नहीं, लोग सहमत होंगे या नहीं, उसे भाग्य पर छोड़ दें, क्योंकि वो आपके वश में नहीं है।
तो ये निष्क्रियता नहीं है?
बिल्कुल नहीं, ये यथार्थवाद है, वास्तविकता को समझना है। और यहीं से दूसरा अहम विचार जुड़ता है, निर्णयों की शक्ति, पावर ऑफ जजमेंट।
अंश 5 में वो कहते हैं, इंसान चीजों से परेशान नहीं होते बल्कि चीजों के बारे में अपने विचारों से परेशान होते हैं। ये कैसे काम करता है, जरा समझाएंगे?
देखिए, कोई भी घटना अपने आप में ना अच्छी होती ना बुरी, वो बस होती है। हमारा मन उस पर एक लेबल लगाता है, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये तो भयानक है, ये ना इंसाफी है। एपिक्टेटस इन पहली कच्ची प्रतिक्रियाओं को इंप्रेशंस कहते हैं।
इंप्रेशंस?
हाँ, मतलब वो पहला विचार या एहसास जो किसी घटना से हमारे दिमाग में आता है। असली खेल शुरू होता है इसके बाद, जब हम उस इंप्रेशन पर मोहर लगाते हैं, हाँ या ना कहते हैं, मतलब उस पर अपना फैसला सुनाते हैं।
उदाहरण दे सकते हैं?
जरूर। जैसे किसी ने आपकी आलोचना की, ये घटना है, पहला इंप्रेशन क्या आया, उसने मेरा अपमान किया। अब आप इस पर यकीन करके दुखी हो सकते हैं, या आप रुक कर सोच सकते हैं, ये उसकी राय है जो उसके अपने अनुभव, उसकी अपनी समझ पर आधारित है। क्या ये वाकई मेरी सच्चाई है? क्या इससे मेरी असलियत बदल गई?
मतलब
असली शक्ति उस घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच के उस छोटे से गैप में है, जहां हम चुन सकते हैं कि उस घटना को क्या मतलब देना है।
बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा। मौत अपने आप में डरावनी नहीं है, मौत का डर डरावना है। नौकरी छूटना अपने आप में बुरा नहीं है, नौकरी छूटने को तबाही मान लेना बुरा है।
क्योंकि हमारे विचार और हमारे निर्णय हमारे वश में हैं, इसलिए हमारी भावनाएं भी हमारे वश में हैं। ये हमें लाचार होने से बचाता है। हमें अपनी पहली प्रतिक्रिया पर तुरंत यकीन नहीं करना चाहिए, रुककर उसे परखना चाहिए। ये जो मुझे महसूस हो रहा है, क्या ये तथ्य है या मेरा अपना जोड़ा हुआ फैसला है?
ये समझ आने पर तो सच में लगता है जैसे कंधों से बोझ उतर गया। लेकिन फिर अपनी इच्छाओं और डर का क्या करें? अगर हम बाहरी चीजों की इच्छाएं ना करें तो जीने का मजा क्या रहेगा? प्रेरणा कहाँ से आएगी?
यहीं पर शायद वो इच्छाओं, विरक्ति और स्वीकृति, डिजायर, अवर्जन एंड एक्सेप्टेंस वाला सिद्धांत आता है। हाँ बिल्कुल, एपिक्टेटस कहते हैं कि अपनी इच्छाएं सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो पूरी तरह तुम्हारे वश में हैं।
जैसे कि
एक अच्छा इंसान बनना, ईमानदार बनना, साहसी बनना, अनुशासित बनना, और नफरत या डर भी सिर्फ उन चीजों से रखो जो तुम्हारे वश में हैं, जैसे कि बेईमान बनना, कायर बनना।
और बाहरी चीजें, सेहत, पैसा, शोहरत,
उनके लिए आप वरीयता रख सकते हैं, प्रेफरेंस रख सकते हैं, चाहें तो कि मिल जाएं, लेकिन उन्हें अपनी खुशी का आधार मत बनाइए। अगर वो मिल जाएं को बहुत अच्छा, न मिले तो भी आपकी अंदरूनी शांति भंग नहीं होनी चाहिए।
और वो एक अजीब सी बात कहते हैं, नेगेटिव विजुअलाइजेशन या प्रिमिडिएटिव मालोरम, कि बुरी चीजों के बारे में सोचो, ये थोड़ा निराशावादी नहीं लगता?
नहीं, ये निराशावादी होना नहीं है, ये यथार्थवादी होना है और कृतज्ञता बढ़ाना है।
कृतज्ञता कैसे?
ऐसे समझिए, अगर आपके पास एक प्याला सा कप है तो कभी कभी ये भी सोचिए कि ये मिट्टी का है, टूट सकता है। अगर आप किसी अपने से बहुत प्यार करते हैं तो याद रखिए कि वो नश्वर है, वो हमेशा नहीं रहेगा।
उफ, ये तो उदास करने वाली बात है।
इसका मकसद उदास होना नहीं है, मकसद यह है कि जब वो चीज या वो इंसान आपके पास है तब आप उसकी ज्यादा कद्र करें, उसे ग्रांटेड न लें। और अगर दुर्भाग्य से वो चीज टूट जाए या वो इंसान बिछड़ जाए तो आप मानसिक रूप से थोड़े तैयार हों, आपको उतना गहरा सदमा न लगे। ये एक तरह का मानसिक कवच है।
अच्छा, ये तो जीवन बीमा जैसा हुआ पर मानसिक स्तर पर, समझी। और इसी से जुड़ा है वो मशहूर कथन अंशार्ट में, ये मांग मत करो कि घटनाएं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हों, बल्कि ये चाहो कि घटनाएं जैसी हो रही हैं वैसी ही हों और तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। क्या ये हार मान लेना नहीं है? भाग्य के आगे घुटने टेकना?
इसी घुटने टेकना नहीं बल्कि वास्तविकता से दोस्ती करना कह सकते हैं, एमोर फाटी यानी भाग्य से प्रेम। देखिए, जो हो रहा है उससे लड़ने में हम अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, है ना? उसे स्वीकार करके हम उस ऊर्जा को अपनी प्रतिक्रिया को सही करने में लगा सकते हैं। यह हमें बहुत शांति देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया से कट जाएं। स्टोइसिज्म हमें समाज में जीना भी सिखाता है।
हाँ, तो समाज में कैसे जिए? सामाजिक दुनिया में जीना, भूमिकाएं, रिश्ते और दूसरे लोग, नेविगेटिंग द सोशल वर्ल्ड, हमारी तो कई भूमिकाएं होती हैं। हम किसी के बेटे या बेटी हैं, दोस्त हैं, कर्मचारी हैं, नागरिक हैं। एपिक्टेटस क्या कहते हैं इस बारे में?
वो कहते हैं कि अपनी हर भूमिका को पूरी ईमानदारी और अपनी पूरी क्षमता से निभाओ। आपका कर्तव्य है अपना पार्ट अच्छे से निभाना, ये देखे बिना कि दूसरा अपना पार्ट निभा रहा है या नहीं, या नतीजा क्या होगा।
मतलब
हो सकता है आपके पिता उतने अच्छे पिता ना हों जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आपका कर्तव्य एक अच्छा बेटा या बेटी बनना है। उनका व्यवहार उनके वश में है, आपका व्यवहार आपके वश में। अपना ध्यान अपने कर्म पर रखो।
और अगर कोई आलोचना करे, कोई बुरा भला कहे, आजकल तो ये बहुत होता है, खासकर ऑनलाइन।
अंश 42 में इसका सीधा जवाब है, अगर कोई आपकी बुराई करता है तो वो सिर्फ अपना नजरिया बता रहा है, जो उसे सही लगता है। ये उसकी समस्या है, आपकी नहीं।
अच्छा,
आपकी अंदरूनी शांति और आपके आत्ममूल्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एपिक्टेटस मजाक में ये कहने की सलाह भी देते हैं, अरे लगता है उसे मेरी बाकी कमियों का पता नहीं, वरना वो सिर्फ इतनी सी बात करके नहीं रुकता।
हाँ, ये तो बढ़िया तरीका है तनाव कम करने का।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि इसे कितनी गंभीरता से लेना है।
और वो भोज वाली बात भी दिलचस्प थी, जीवन एक दावत की तरह है।
हाँ, वो कहते हैं जैसे दावत में आपके सामने कोई डिश आती है तो आप शालीनता से अपना हिस्सा लेते हैं, है ना? आप उस डिश के पीछे नहीं भागते जो आगे बढ़ गई है, और ना ही उस डिश के लिए बेचैन होते जो अभी आई नहीं है।
सही बात है।
बस जो आपके सामने है उसका सलीके से आनंद लेते हैं और दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। यही रवैया जीवन की अच्छी चीजों के प्रति होना चाहिए, अवसर हो, सफलता हो, रिश्ते हों, विनम्रता, संयम और कृतज्ञता।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन इसे असल जिंदगी में उतारना ये मुश्किल लगता है। यहीं पर शायद स्टोइक अभ्यास और प्रगति का मार्ग, द प्रैक्टिस ऑफ स्टोइसिज्म, आता है, जिसे वो एस्केसिस कहते हैं।
बिल्कुल सही। एपिक्टेटस बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि दर्शन सिर्फ पढ़ने या बातें करने की चीज नहीं है, ये जीने की चीज है, रोज अभ्यास करने की चीज है।
अभ्यास? किस तरह का अभ्यास?
अपने विचारों पर ध्यान देना, अपनी प्रतिक्रियाओं को जांचना, रोज थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करना। अंश 46 में वो चेतावनी देते हैं, अपनी फिलॉसफी का ढिंडोरा मत पीटो, उसे जी कर दिखाओ। हो सकता है लोग हंसें, आपको दिखावटी कहें, पर आपको अपने सिद्धांतों पर टिके रहना है। असली परीक्षा बातों में नहीं, कर्मों में है।
और वो एक अंतर बताते हैं साधारण व्यक्ति, प्रगति करने वाला, और सिद्ध दार्शनिक। अंश 48, वो क्या था?
हाँ, वो कहते हैं जब कुछ गलत होता है तो साधारण इंसान दूसरों को दोष देता है, इसकी वजह से हुआ।
हाँ, अक्सर हम यही करते हैं।
जो इंसान प्रगति कर रहा है, जो सीखने की राह पर है, जिसे वो प्रोकोपेटॉन कहते हैं, वो खुद को दोष देता है, शायद मेरी प्रतिक्रिया गलत थी या मुझे और सावधान रहना चाहिए था।
हम
और जो सिद्ध हो चुका है, जो वाकई दार्शनिक बन गया है, वो किसी को दोष नहीं देता, न दूसरों को न खुद को। वो बस समझता है कि चीजें जैसी होनी थी वैसी हुई, और असली नुकसान केवल उसके अपने गलत निर्णयों से हो सकता है, बाहरी घटनाओं से नहीं।
मतलब लक्ष्य रातों रात परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना है, जैसे कोई एथलीट रोज ट्रेनिंग करता है।
एकदम सही। धैर्य और निरंतर प्रयास, यही कुंजी है। ये जीवन भर चलने वाला अभ्यास है, कोई शॉर्टकट नहीं है।
तो अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो, इस छोटी सी किताब के जो बड़े संदेश हैं, वो क्या होंगे?
मेरे हिसाब से सबसे पहला और सबसे बुनियादी संदेश तो वही है, नियंत्रण का द्वंद्व। ये पहचानना कि क्या हमारे वश में है, हमारे विचार, कर्म, और क्या नहीं, बाकी सब कुछ, और अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ उसी पर लगाना जो वश में है।
हाँ,
ये चिंता और निराशा की जड़ पर चोट करता है। सोचिए ना, आज के भारत में ट्रैफिक जाम, सरकारी दफ्तरों की लेट लतीफी, दूसरों की राय, इन पर गुस्सा करके कुड़कर क्या मिलता है? कुछ नहीं। शांति तभी मिलेगी जब हम अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देंगे।
हाँ, ये सच है। और दूसरा बड़ा संदेश,
निर्णयों की शक्ति। बाहरी घटनाएं अपने आप में न्यूट्रल होती हैं, तटस्थ। हमारा नजरिया, हमारा जजमेंट उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। ये हमें अपनी भावनाओं का मालिक बनाता है। जैसे परीक्षा में कम नंबर आना एक घटना है, दुखी होना स्वाभाविक है, पर ये सोचना कि मैं तो बेकार हूं, ये हमारा जोड़ा हुआ फैसला है। हम चुन सकते हैं कि इसे सीखने का अवसर माने।
सही कहा। तीसरा?
तीसरा, सद्गुण ही एकमात्र सच्चा अच्छा है। ईमानदारी, साहस, न्याय, संयम, ये असली दौलत है। क्यों? क्योंकि इसे कोई छीन नहीं सकता। पैसा, शोहरत, सेहत, ये सब अस्थाई हैं, आनी जानी चीजें हैं। हमारा चरित्र ही हमारी स्थाई संपत्ति है। ये विचार हमें बाहरी चीजों की अंधी दौड़ से बचा सकता है।
और चौथा?
चौथा, स्वीकृति और वर्तमान में जीना। अमोर फाती, जो हो रहा है उससे लड़ो मत, उसे स्वीकार करो। इसका मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि यथार्थ को समझकर उसके अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ करना है। जैसे मैंने कहा, बारिश हो रही है तो कोसने के बजाय छाता लेकर निकलो।
बिल्कुल। और पांचवा?
पांचवा, अपने कर्तव्यों का पालन करो पर नतीजों से मत जुड़ो। एक अच्छे बेटे, दोस्त, नागरिक बनो, क्योंकि ये सही काम है। इसलिए नहीं कि बदले में तारीफ मिलेगी या कुछ और। अपना कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। गीता का ये संदेश यहां भी गूंजता है ना?
हाँ बिल्कुल। छठा संदेश?
छठा, निरंतर अभ्यास और आत्मनिरीक्षण, एस्केसिस। जैसा हमने कहा, दर्शन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रोज अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना जरूरी है, उनमें सुधार करना जरूरी है।
और सातवां?
सातवां, नश्वरता को याद रखना। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह हमें जीवन की कीमत समझाता है और चीजों से जो हमारा गैर जरूरी मोह है उसे कम करता है।
हाँ, इस किताब में ऐसी कई पंक्तियां हैं जो सच में सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ याद करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है।
हाँ, वो पहली बात, कुछ चीजें हमारे वश में हैं और कुछ नहीं। ये तो जैसे पूरी फिलॉसफी की चाबी है।
सही है। और मेरे लिए मनुष्य चीजों से नहीं बल्कि चीजों के बारे में अपने विचारों से परेशान होते हैं। ये हमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी और ताकत देता है।
बिल्कुल। और वो स्वीकृति वाला सूत्र, घटनाएं वैसी हों जैसी आप चाहते हैं, ये मांग ना करें, बल्कि जैसी वे होती हैं वैसा ही चाहें और आपका जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। कितना कितना सुकून देने वाला विचार है ये।
हाँ, और ये भी, कोई भी आपके अनुमति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। मतलब हमारी अंदरूनी शांति की चाबी हमारे ही हाथ में है, कोई और हमसे छीन नहीं सकता।
और आखिर में अभ्यास पर जोर देने वाला, अपनी फिलॉसफी समझाओ मत, उसे जी कर दिखाओ। बातें कम, काम ज्यादा।
तो ये सिद्धांत आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतर सकते हैं? कुछ ठोस उदाहरण सोच सकते हैं?
हाँ बिल्कुल। जैसे अगली बार जब ट्रैफिक में फंसे और गुस्सा आने लगे, तो खुद से पूछें, क्या ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में है? जवाब आएगा नहीं। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरा गुस्सा, मेरी प्रतिक्रिया। मैं इस समय का क्या उपयोग कर सकता हूँ?
हाँ, शायद कोई अच्छी ऑडियो बुक सुन ले, या बस गहरी सांसें ले।
बिल्कुल। या दफ्तर में किसी सहकर्मी ने आपकी बात नहीं मानी, आप खिंचने के बजाय सोच सकते हैं, उसकी राय या उसका काम करने का तरीका मेरे वश में नहीं है। मेरे वश में क्या है? शांति से अपनी बात दोबारा रखना, या फिर अपना काम बेहतरीन तरीके से करना।
और रिश्तों में अगर किसी अपने से उम्मीदें पूरी ना हो,
तो निराश होने के बजाय ये याद रखना कि वो एक अलग इंसान है, उनकी अपनी सोच है, अपनी इच्छाएं हैं। हम उनसे प्यार कर सकते हैं पर उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी अपेक्षाओं को, उन्हें थोड़ा यथार्थवादी बना सकते हैं।
और सोशल मीडिया का क्या? नेगेटिव कमेंट्स?
वही एपिक्टेटिस वाली बात याद करें, ये उसकी राय है, मेरी सच्चाई नहीं, और उसे जाने दें। हमारी कीमत लाइक्स या कमेंट से तय नहीं होती, वो हमारे अंदर है।
मेरे लिए इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो ये है कि असली आज़ादी वो बाहर की परिस्थितियों को बदलने से नहीं मिलती, वो मिलती है अपने अंदर के नज़रिए को बदलने से।
बिल्कुल।
ये हमें लाचार महसूस करने से रोकता है, हमें अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं का जिम्मेदार बनाता है। ये एक बहुत बहुत शक्तिशाली करने वाला विचार है।
एम्पावरिंग है। और मेरे लिए सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि ये विचार एक ऐसे व्यक्ति से आए जिसने इतनी इतनी भयानक मुश्किलें झेलीं। गुलामी, लंगड़ापन, ये साबित करता है कि इंसान की जो भीतरी शक्ति है वो बाहरी हालात से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है।
सही कहा।
ये जानना कि हम हमेशा हर हाल में अपनी प्रतिक्रिया चुनने के लिए आज़ाद हैं, ये अपने आप में जीवन बदल देने वाला सत्य है। शायद आज की इस अनिश्चित दुनिया में हमें इसी आंतरिक किले की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब सोचने वाली बात यह है, ऐसी कौन सी एक चीज है जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है पर हम उसे बदलने की कोशिश में अपनी शांति खो रहे हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।